ओम शांति। बाप दादा का ये दिन महत्वपूर्ण दिन है। 18 जनवरी संगम युग में ब्राह्मणों के लिए विशेष दिन है। इस दिन को अनेक टाइटल बाबा ने दिए हुए हैं कि ये दिन है समर्थ बनने का दिन। माना बाबा के वरदानों से जो जिस संकल्प में होते हैं वैसी समर्थी को सहज अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहे कि स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप। स्मृति स्वरूप जब कहते हैं बाबा तो स्मृति में भी दो प्रकार के बच्चे बाबा हमेशा देखते हैं। जो हमने अब तक की मुरलियों का अध्ययन किया उसमें बाबा ने 18 जनवरी के लिए यही कहा कि स्मृति में भी दो प्रकार के बच्चे बाबा हमेशा देखते हैं। एक है योगी और दूसरे है वियोगी। योगी जो है वो सहजता से बाबा के स्नेह में समा जाते, बाबा के स्नेह को अपने में समा लेते हैं। लेकिन जो वियोगी है वो बाबा को उलहना देते रहते हैं और वियोग में अश्वन बहाते हैं। मोती दोनों ही बहाते हैं लेकिन जो योगी बच्चों के मोती होते हैं वो अमूल्य मोती जिसको बाबा भी अपने दिल के अंदर समा लेते हैं। लेकिन जो वियोगी बच्चे उलहना देते हुए बाबा को कहते हैं कि बाबा इतना जल्दी क्यों चले गए, बाबा कहे मैं चला कहां गया हूं, मुझे क्यों भेज रहे हैं, मैंने तो खाली कमरा बदली किया है। और बच्चे क्या कहते हैं, वियोग के कारण बाबा आप इतना जल्दी क्यों चले गए। बाबा कहे मुझे इतना जल्दी क्यों भेज रहे हैं, मैं अकेला तो जाने वाला नहीं हूं, लेकर के ही जाऊंगा सबको साथ में। तो इस प्रकार के उलहने जब दे करके आंसू बहाते हैं तो बाबा के साथ का बाबा के स्नेह का अनुभव नहीं कर पाते हैं। जब बाबा ने आरंभ से ही वायदा दिया है कि बच्चे अंत तक मैं साथ में हूं, खाली नीचे जब साकार में थे तो धीमी गति से सेवा करते थे, लेकिन जब अव्यक्त बाबा ने ये रूप धारण किया संपूर्णता का तो उससे सेवा की वृद्धि कितनी फास्ट हो गई कि ब्रह्मा बाबा के संकल्प की रचना हम सब बच्चे हैं। मैं समझती हूं यहां शायद ही किसी ने साकार बाबा को देखा होगा। हर एक ने अव्यक्त बाबा से ही मिलन मनाया है तो हम सभी कौन हुए, हम सभी संकल्प की रचना हुई। और इसलिए संकल्प की रचना बहुत पावरफुल होती है। ब्रह्मा बाबा के संकल्पों ने हमारा आवाहन किया और हम बाबा के पास आए। निमित्त चाहे बाबा ने किसी को भी बना दिया हो, लेकिन है हम सभी बाबा की संकल्प की रचना। तो जब बाबा हमें संकल्प से क्रिएट कर सकते हैं, तो बाबा संकल्पों से ही पावरफुल समर्थि भी देते हैं। और इसीलिए जो समर्थि चाहिए उस समर्थि को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उल्हने की माला बाबा को नहीं पहनाओ। अभी भी जब बाबा इतना स्नेह हम बच्चों को दे रहा है, शक्ति हमारे अंदर भर रहा है, सहयोग बाबा का हर कदम हर एक ने अनुभव किया हुआ है, तो समर्थि भी बाबा की इतनी ही पावरफुल रूप से हमें प्राप्त हो रही है। किन बातों की समर्थि बाबा सहज हम सभी को संकल्प के माध्यम से देते हैं? तो सहज समर्थि जो बाबा से प्राप्त हुई कि बाबा जैसे ही अव्यक्त हुए तो बाबा बैकबोन हो गए, हमारी रीढ़ की हड्डी जिससे हम खड़े हो सकते हैं दुनिया के आगे, वो रीढ़ की हड्डी बन करके सबसे पहली तो ये समर्थि मिली खड़े होने की। साथ ही साथ बाबा ने जो समर्थि दिया कि जितना बच्चे, ये बाबा के महावाक्य के अंडरलाइन रूप में है, कि जितना बच्चे बाबा के स्नेह में समाये हुए रहेंगे उतनी बाबा की शक्ति को समर्थि को अपने अंदर अनुभव करेंगे। लेकिन स्नेह में समाना बहुत आवश्यक है। बाबा कहते कई बच्चे मुझे सामने जरूर रखते हैं लेकिन समाते नहीं है, अपने आप को बाबा से अलग रखते हैं। अलग नहीं रखो, कंबाइंड हो जाओ। जिस तरह से बाप दादा कंबाइंड हो गए, इसी तरह बाप दादा और मैं भी कंबाइंड हो गई। बाबा ने निमित्त दादी को हाथ में हाथ दिया और शक्ति भरी, स्थूल में दादी को हाथ में हाथ दिया, लेकिन हम सब बच्चों को संकल्पों का हाथ में हाथ बाबा का दिया हुआ है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि भक्ति के अंदर ब्रह्मा को हजार भुजा वाला बताया गया है। हजार भुजा वाला सिद्ध कैसे होगा, साकार में सिद्ध नहीं होता है। और इसलिए बाबा अव्यक्त बना और बाबा के सहयोग की, हिम्मत की भुजा हम हर एक को प्राप्त होती है, तो हजारों भुजा वाला ब्रह्मा बाबा या बाप दादा अव्यक्त वतन से हम सबको सहयोग, हिम्मत, शक्ति, समर्थि प्रदान कर रहे हैं। सिर्फ स्मृति स्वरूप हो जाना, यानी उस बाबा के स्नेह में समा जाना, और जितना बाबा के स्नेह में समाया तो हर वक्त वरदान का हाथ हमारे ऊपर हम महसूस करेंगे। तो इसीलिए कहा कि ये दिन को कहा गया वरदानी दिन है। बाबा अमृत वेले से लेकर के हर बच्चे को वरदान देना आरंभ कर देता है और उन वरदानों में ही सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, सर्व प्राप्तियों की, सर्व संबंध के अनुभव की जो चाहे वो समर्थ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जब बच्चे अमृत वेले बैठे तो बाबा के साथ नहीं, बाबा में, बाबा के प्यार में समाये हुए स्वयं को महसूस करे, जिसको बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में कहा कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। शब्द एक मिस कर दिया, लव लीन हो गई। बाबा के प्यार में हम सभी समा जाए, जब ऐसी लवलीन अवस्था हो जाती है, उसी का ही यादगार भक्ति मार्ग में लीन अवस्था कह दिया। तो इसलिए अमृत वेले से लेकर के कल विशेष ही अभ्यास करना है कि लवलीन स्थिति में हम कैसे सदा रह सके। बाबा के प्यार में जब आंसू भी आते हैं ना, उसका प्रमाण क्या? मम्मा हमेशा कहती थी कि वो आंसू, बड़ी दादी हमेशा ये बात बताती थी कि मम्मा बाबा के स्नेह में जब समा जाती थी तो हमेशा मम्मा की आंखों में पानी जरूर होता था लेकिन गिरता नहीं था। गिरना ये वियोग की निशानी है, लेकिन जब किसी के प्यार में समा जाना तो वो आंसू आंखों के भीतर ही समाये रहते हैं, वो कभी गिरता नहीं है। ये मम्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप कि मम्मा ने अपने जीवन में कभी भी एक भी आंसू बहाया नहीं, कभी भी, चाहे बीमारी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन बाबा के स्नेह में इस तरह समाई रहती थी कि वो आंसू भी आंखों में मोती बन करके तैरते रहते थे, गिरते नहीं थे। गिरना ये वियोग की निशानी है। तो इसीलिए बाबा कहे, बाबा के प्यार में लवलीन वो मोती बन जाते हैं और उन मोतियों को बाबा संजोता है, अपने पास रखता है। और जिस तरह से हम बाबा के स्नेह में समाये होते हैं तो बाबा भी बच्चों के स्नेह में स्वतः समा जाते हैं। इसीलिए लवलीन अवस्था को भक्ति में कह दिया लीन हो गया, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, लीन नहीं हुई, प्यार में समा गए। ये बाबा के महावाक्य है। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि इस दिन बाबा ताजपोशी करता है, समर्थी माना ताजपोशी, तिलक देता है। कौन सा तिलक? विजयी का तिलक। तो कल अमृत वेले से हर कोई अनुभव करे कि बाबा मेरे मस्तक पर वी का तिलक, विजयी भव का वरदान मुझे दे रहे हैं, इसको अनुभव करना है। विजयी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इसीलिए विजयी किस पर? तो बाबा कहे माया पर, सूक्ष्म कमजोरियों पर विजय का वरदान बाबा से ले लो। बाबा खुली ऑफर दे रहे हैं बच्चों को, साथ ही साथ ताजपोशी की समर्थि देते हैं। तो विजय की समर्थि मिली तिलक के रूप में, उसको भी अनुभव करना है। कल कोई भी बाबा को कोई भी प्रकार के उलहने की माला न चढ़ाए, लेकिन ताजपोशी को महसूस करे। कौन से ताजपोशी? बाबा कहे जिम्मेवारी की ताजपोशी। बाबा ने हम बच्चों को संकल्पों से रचा ही इसलिए है ताकि बच्चे आगे बाप पीछे, जिम्मेवारी से विश्व परिवर्तन का कार्य सहजता से करे। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी इतनी बड़ी दे दी बाबा ने, इतनी बड़ी समर्थी हमें दिया है, लेकिन हम वो समर्थी को कहाँ यूज कर रहे हैं? हम उस समर्थी को अभी तक स्वपरिवर्तन में ही यूज कर रहे हैं, जबकि बाबा अमृत वेले ये विजय का वरदान देकर के माया पर, प्रकृति पर, अनेक प्रकार की कमजोरियों पर, अनेक प्रकार के दैहिक आकर्षणों से परे ले रहने के लिए सहज वरदान देते हैं, तो अभी भी योगी के बजाय योद्धा क्यों बनते जा रहे हैं? इसलिए बाबा कहे कि जब विश्व परिवर्तन का की जिम्मेवारी बाबा ने हमें ताज के रूप में पहना दी, तो कब तक अभी तक स्वपरिवर्तन में लगे रहेंगे? ये समय की समाप्ति कब होगी? जितना हम अनेक आत्माओं को एक ही स्थान पर बैठते हुए अनेक आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना का वाइब्रेशन देते हुए परिवर्तन की समर्थी हमें प्रदान करनी है, वो समर्थी अभी तक हम स्वयं में ही लगा करके योद्धा बन करके अभी तक बाबा को कंप्लेन कर रहे हैं कि बाबा करना तो चाहता हूँ, होता नहीं है, तो समर्थ स्वरूप नहीं बने ना। समर्थ स्वरूप क्यों नहीं है? क्योंकि स्मृति स्वरूप नहीं है। तो स्मृति स्वरूप जो होगा वो समर्थ स्वरूप, वो इस ताज को अच्छी तरह से धारण करते हुए अपने वाइब्रेशंस के द्वारा अनेकों को समर्थी प्रदान करने वाले बन जाएंगे। ये समर्थी बाबा ने हम बच्चों को दी है, उसको यूज करना है। साथ ही साथ और कौन सी समर्थी बाबा ने हम बच्चों को दी? संपूर्ण कर्मातीत बनने की समर्थी बाबा ने हम बच्चों को दी है। कैसे दी है? बाबा की एक वाणी में पढ़ रही थी तो उसमें बाबा ने यही कहा कि बाबा के अंतिम महावाक्य कौन से थे? निराकारी भव, निरहंकारी भव, निर्विकारी भव। ये बाबा के वरदान को महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए जो समर्थी बाबा ने दी है उसकी विधि है अशरीरी भव। इसीलिए बाबा की पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यूअस हम बच्चों को हर मुरली के बाद एक ड्रिल बाबा जरूर कराते रहे कि 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ। और 1 सेकंड में जब बाबा कहते थे तो 1 सेकंड में हम देह से डिटैच आत्म स्वरूप में स्थित होकर के अशरीरी बन करके जब बैठते हैं तो उसी समय ये तीनों वरदानों की समर्थी साकार में आ जाती है। निराकारी भव, क्योंकि अशरीरी माना ही निराकारी भव, अशरीरी माना ही निर्विकारी भव, और अशरीरी माना ही निरअहंकारी भव। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को ये विधि के माध्यम से अभ्यास कराते रहे ताकि उस समर्थी को हम साकार में अनुभव कर सके। लेकिन अभी तक भी देह अभिमान या ये शिकायत बच्चों की रहती है, मैंपन, मेरापन अभी भी छूटता नहीं है, तो उसका कारण यही है कि इस ड्रिल के अभ्यासी हम नहीं बने हैं। तो थोड़ी देर के लिए अभी हम बैठ करके इस ड्रिल के माध्यम से अशरीरी हो जाए, 1 सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव करते हैं ताकि कल इस अभ्यास को और आगे अमृत वेले से बढ़ाते जाए। तो सभी सब बातों को समेट लो, अपनी नोटबुक पेंसिल भी समेट लो और 1 सेकंड में देह से न्यारे अशरीरी भव, इस वरदान को अनुभव करें। ब्रुकुटी की मध्य मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, देह से न्यारे विदेही, बाप दादा के साथ कंबाइंड निराकारी भव, निरअहंकारी भव, निर्विकारी भव, के वरदानी आत्मा शांति। तो इस तरह से जितना हम बीच बीच में अशरीरी बनने के अभ्यासी होंगे, उतना बाबा के अंतिम बोल के, जिसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है, उस कर्मातीत स्थिति की समर्थी हम सहज अपने जीवन के अंदर अनुभव करेंगे। साथ ही साथ और कौन सी समर्थी दी है बाबा ने? तो बाबा ने कहा यादगार में शांति स्तंभ है, लेकिन वास्तव में बाबा ने शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, पवित्र स्तंभ और शक्ति स्तंभ हम बच्चों को बनाया है, और इसीलिए ये चारों स्तंभ, शक्ति स्तंभ, शांति स्तंभ, पवित्र स्तंभ बन करके, ज्ञान स्तंभ बन करके हमें जग संसार के अंदर, विश्व के अंदर लाइट हाउस बन जाना है। ये समर्थी बाबा ने हम बच्चों को दी है। बाबा के जीवन का यादगार शांति स्तंभ है और वो शिक्षाएं हैं, लेकिन वैसे ही अपने जीवन को ऐसा स्तंभ बना दे जो विश्व के अंदर अनेक भटकती आत्माओं को सहजता से राह मिल जाए, ऐसा लाइट हाउस, माइट हाउस बन करके अनेक आत्माओं को बाबा तक पहुंचाना, ये समर्थी बाबा ने हमें दी है। तो प्रैक्टिकल इस समर्थ स्वरूप में अपने आप को स्थित करना है कि मैं शांति स्तंभ हूं। स्तंभ की तरह, स्तंभ माना अचल, अडोल, अखंड, इस तरह से अपने आप को महसूस करना। तो जब ऐसे स्तंभ बन जाएंगे तो आदरणीय दादी जी की तरफ प्रकाश स्तंभ, सारे विश्व की आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश, शक्ति का प्रकाश, पवित्रता का प्रकाश, शांति का प्रकाश देने वाले हम स्तंभ बन जाएंगे। तो ये सामर्थ्य बाबा ने हम बच्चों को दी है, लेकिन पहले खुद की स्थिति अचल, अडोल, अखंड तो बने। अभी भी बाबा कहते छोटी छोटी बातों में हलचल में आ जाते हैं, तो जो हलचल में आ जाएगा वो स्तंभ कैसे बनेगा। इसीलिए बाबा ने कहा समस्याएं तो अंत तक आनी ही है। कई बच्चे ये भी बाबा को काम दे देते हैं, बाबा आप क्या कहते हैं, आप ये हलचल वाली स्थिति हमारे सामने नहीं लाओ, परिस्थिति या समस्याएं हमारे सामने नहीं लाओ। बाबा कहते ये तो अंत तक आनी ही है, ये तो अंत तक आनी है, लेकिन ये समस्याओं को पेपर समझो। पेपर समझेंगे तो पास कर सकेंगे, हिसाब किताब नहीं समझो। बाबा की एक वाणी मुझे याद आती है, जो मैं अभ्यास कर रही थी, अध्ययन कर रही थी, तो उसमें बाबा ने कहा था कि पेपर तो आएंगे, अंत तक आएंगे, समस्याएं परिस्थिति देखने के लिए आते, हिलते हैं कि अचल है, देख रहे हैं बाबा ड्रामा, इसीलिए ये पेपर लाता है, तो उससे हमें भी पता चलता है कि सचमुच में अचल बन। पेपर ही ना आए तो कैसे पता चलेगा कि मैं अचल हूं, अडोल हूं या नहीं हूं। तो इसीलिए बाबा कहे ये पेपर तो अंत तक आएंगे, लेकिन उसको पेपर ही समझना, रियल नहीं समझना, ये रियल नहीं है। इतना स्पष्ट बाबा ने कहा ये रियल नहीं है, ये सिर्फ पेपर है, इसलिए पेपर समझ के उसको पास कर दो और देखो मेरी स्थिति हलचल में आई या नहीं आई। क्योंकि बाबा ने जो वरदान मुझे अचल अडोल स्थिति का दिया हुआ है, ये समर्थी बाबा ने मुझे प्रदान की है, लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर रही हूं। और कौन सी समर्थी दी है बाबा ने? तो बाबा ने कहा कि बाबा ने दृढ़ संकल्प धारी होने की समर्थी दी है, कि इस दिन पर दृढ़ संकल्प धारी बनना है, और दृढ़ संकल्प धारी बन करके हर बात में सफलता को प्राप्त करना है, आगे बढ़ते जाना है। ये समर्थी बाबा ने हम बच्चों को दी है, और इस समर्थी को भी हमें यूज करते हुए जितना स्मृति स्वरूप, इसीलिए हर समर्थी प्रैक्टिकल प्रयोग में तभी आएंगी जब स्मृति स्वरूप होंगे। इसलिए बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप सुसमर्थि स्वरूप। अगर स्मृति नहीं है, वियोगी है, उलहना देने वाले, बाबा को शिकायत करने वाले, ये स्वरूप हमारा है, कंबाइंड स्वरूप नहीं है, तो वो समर्थि काम नहीं करती है। नहीं तो बाबा ने तो समर्थि दे दिया है बच्चों को, और समर्थ स्वरूप हम तभी बन पाएंगे जब स्मृति स्वरूप होंगे। लेकिन स्मृति स्वरूप है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या? हम स्मृति स्वरूप है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या क्या कहेंगे? स्मृति स्वरूप हम है या नहीं है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होगा? प्रत्यक्ष प्रमाण है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। स्मृति स्वरूप जो है वो नष्टो मोहा। अगर नष्टो मोहा नहीं है, माना स्मृति स्वरूप भी नहीं है। क्योंकि गीता का अंतिम अध्याय में अंतिम वाक्य जब भगवान अर्जुन से पूछता है कि तेरा मोह नष्ट हो गया अभी इतना ज्ञान सुनने के बाद, आज भगवान हमें भी पूछता है कि हम सबको इतना साल 50 साल ज्ञान सुनाते गए बाबा, अव्यक्त पालना देते रहे, अभी तक भी हमारा मोह नष्ट हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि नष्टो मोह होंगे तो स्मृति स्वरूप होंगे। अगर नष्टो मोह नहीं, किन बातों से? अपनी देह से, देहधारियों से, देह के संबंधों से, पदार्थों से, चीजों से, साधनों से, संबंधों से, अगर कहीं न कहीं आकर्षण है, कहीं न कहीं लगाव की थोड़ी भी रस्सियां होगी, तो स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते हैं। जैसे ही स्मृति स्वरूप होने जाएंगे कि वो याद तोड़ देंगी, वो याद हमें नीचे ले आएंगी। इसलिए जब स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते हैं तो समर्थ स्वरूप का वरदान प्रयोग में कैसे आएगा? नहीं तो जो बाबा ने इतना पावरफुल वरदान हमें दिया है वो काम न करे, लेकिन शायद हमें उसको यूज करने की विधि नहीं आ रही है। विधि नहीं आ रही है क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा सूक्ष्म में लगाव देहधारियों से ही है, देहधारियों से है। एप्रिशिएट करना किसी के विशेषता को, गुणों को, बात अलग है, लेकिन उसके प्रभाव में चलना, माना उसकी स्मृति स्वरूप हो जाना स्वाभाविक है। तो समर्थी काम नहीं करेगी, बाबा के कोई भी वरदान काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए बाबा के वरदान हमें ये स्पेशल दिन पर, विशेष दिन पर प्राप्त है। सर्व समर्थियों का वरदान जब मिला हुआ है फिर भी वो काम क्यों नहीं कर रहा है? गलती किसकी है, बाबा की या मेरी? बाबा की या मेरी? हमारी है, क्योंकि हम नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप नहीं बने। अभी तक अपनी देह से ही नष्टो मोहा कितना बने। इसीलिए बाबा कहे कि वो समर्थी का वरदान काम नहीं कर रहा है। वरदान बाबा दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, लेकिन वो वरदान वेस्ट जा रहा है, क्योंकि मैं उसको प्रयोग में नहीं ला रही हूं। कई बार उसका प्रत्यक्ष स्वरूप अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में आज अगर दे दूं, शायद किसी किसी को अच्छा न भी लगे, लेकिन हर एक के हाथ में मोबाइल होता है। जहां भी हम जाते हैं ना, एक सेल्फी, एक फोटो, दीदी आपके साथ एक, अरे बाबा का फोटो रखो ना। अभी तक भी देहधारियों के आकर्षण में कब तक रहेंगे? अगर कल के दिन ये संकल्प कर दो, आज के बाद मुझे क्या करना चाहिए? बाबा का ही फोटो रखना है, ताकि बाबा की याद, बाबा की स्मृति सहज हो जाए। नहीं दीदी, आपके साथ एक फोटो होना चाहिए, होना चाहिए दीदी के साथ एक फोटो होना चाहिए, होना चाहिए कोई भी देहधारियों के साथ एक फोटो होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इनसे भी ऊपर चले जाओ। जिस दिन इस पर विजयी प्राप्त कर लिया ना, वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी देखते हैं कितने लोग पास होते हैं इसमें, क्योंकि कल 18 जनवरी के दिन जहां जहां जाएंगे वहां वो फूलों का डेकोरेशन होगा, हर कोई अपनी सेल्फी निकालता रहेगा। बाबा का फोटो रखो, जितना बाबा का फोटो रखेगा तो बाबा की याद हर पल हमें समर्थ बनाती जाएगी। व्यक्तियों की याद समर्थ नहीं बनाएंगी। योग में भी बैठेंगे उस व्यक्ति की याद आती रहेगी, तो इसीलिए वो समर्थी का वरदान काम नहीं कर रहा है। क्या चाहते हैं? व्यक्ति की याद में रह करके या व्यक्ति के फोटो निकालते जाने से अगर समर्थी के वरदान से वंचित रहना चाहते हो या समर्थी के वरदान को प्रैक्टिकल अनुभव करना चाहते हो, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। तो इसीलिए अब आपके ऊपर है फैसला कि आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है। समर्थी के वरदान को अनुभव करो जीवन के अंदर। जितना उसको अनुभव करेंगे, जितना उसको प्राप्त करेंगे, उतना बाबा के हर वरदान से आप स्वयं को योग युक्त, स्नेह युक्त, जीवन मुक्त सहजता से अनुभव कर पाएंगे। सर्व बंधनों से मुक्त सहजता से अपने आप को अनुभव कर पाएंगे। ये वरदान बाबा का दिया हुआ है। जैसे शास्त्र में एक बात याद आती है कि द्रौपदी के जब वस्त्र हरण हो रहे थे, वो पुकार रही थी, हे प्रभु मुझे बचाओ, हे प्रभु मुझे बचाओ, लेकिन वो साड़ी का पल्लू लास्ट का पकड़ के रखी थी, अपनी रक्षा खुद करना चाह रही थी, पुकार भी रही थी लेकिन इसको नहीं छोड़ रही थी। तो साड़ियां ऊपर तक आती थी, नीचे नहीं आ रही थी। लेकिन जिस समय उसने वो पल्लू भी छोड़ दिया, समर्पण कर दिया कि अब प्रभु तेरे हवाले, जब ऐसी समर्पणता आ गई तो सारी साड़ियां आ गई नीचे और रक्षा हो गई। बाबा के वरदान भी यहां तक आ रहे हैं हमारे ऊपर, लेकिन क्योंकि अभी तक नष्टो मोहा नहीं बने हैं, इसलिए वो वरदान अनुभव नहीं हो रहे हैं। वो वरदान यहां तक है, नीचे नहीं आ रहे हैं। संघर्ष करना पड़ रहा है मुझे। क्यों संघर्ष करना पड़ रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं मेरी बुद्धि अटकी हुई है, जिसको मैंने पकड़ के रखा है, कोई न कोई देह को, देहधारी को या स्वयं की देह को भी पकड़ के रखा हुआ है। इसीलिए वो वरदान यहाँ तक आने के बावजूद भी यहाँ नीचे उतर नहीं रहे। जिस दिन समर्पण, तो सर्व समर्थी संपन्न अनुभव हो जाएगा। हर वरदान साकार में महसूस करने लगेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा है ये साइंस के सारे साधन आप लोगों के लिए ही है, लेकिन इसका प्रयोग भी कैसे करना चाहिए। देहधारियों से मुक्त होने के बजाय और देहधारी में फंसाते जाए, ऐसे अगर उसका प्रयोग करते रहे तो ये साधन इतना सुंदर मिलने के बावजूद भी हमने उसका सदुपयोग नहीं किया और ये अपने आप को बंधन में डालते रहे और महसूस भी नहीं हुआ कि बंधन में जा रहे हैं, निर्बंधन नहीं हो रहे हैं। और इसीलिए बाबा कहते हैं ये साइंस के साधनों का सदुपयोग करते हुए उससे भी निर्बंधन होने का जहां पुरुषार्थ हो जाए, तो बाबा के सारे वरदान जो यहाँ तक आ रहे हैं वो सहजता से अनुभव होने लगेंगे। विजय का वरदान, सर्व समर्थियों का वरदान, जो बाबा ने हमें जिम्मेवारी का ताज दिया है, उस ताज को भी हम सहजता से उस जिम्मेवारी को निभा सकेंगे। जिस तरह से बाबा चाहते उस तरीके से हम निभा सकते हैं, तो अब इसको प्रैक्टिकल अनुभव करो। तो कल अमृत वेले से जिस प्रकार मुरली तक तो याद की स्थिति बहुत अच्छी रहती है, उसके बाद सारे सेल्फी खींचने के चक्कर में वो अवस्था स्थूल में आ जाती है, और स्थूल में आ गई तो कोई अनुभव नहीं कर पाएंगे। सारा दिन वरदानों का अनुभव करो। खाली 8 बजे तक का वरदान का समय है ये बाबा ने नहीं कहा है। सारा दिन उसका अनुभव करो, और जितना उसको अनुभव करेंगे उतना जो बाबा ने हम बच्चों को समर्थि दी है एक एक चीज की, विश्व कल्याण की, स्तंभ बनने की, लाइट हाउस माइट हाउस बनने की, उसको बहुत सहज आप प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे और दूसरों को भी अनुभव कराने के निमित्त बन जाएंगे। तो इसीलिए स्नेह में समाये रहो सारा दिन, और शाम को कैसा बाबा के आवाहन में तो बैठते हैं, लेकिन कल अनुभव ये होगा कि बाबा मेरा वतन में आवाहन कर रहा है, और वतन वासी बन करके अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के अव्यक्त वतन में अव्यक्त बाप दादा से अव्यक्त मिलन के अभ्यासी बन जाएंगे, क्योंकि अब यही प्रमोशन का समय आया है। अब यहां से ही प्रमोशन होने वाली है, तो इसीलिए बाबा जो कहते हैं कि प्रमोशन में आओ। जो बाबा 71 की मुरली से लेकर के 18 जनवरी 71 की मुरली से, यही बाबा ने हर मुरली में इशारा दिया है। हर 18 जनवरी की मुरली में स्टडी कर रही थी, उसमें यही पाया कि बाबा अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में हमारा आवाहन कर रहे हैं, 71 से आवाहन कर रहे हैं, 71 से, कि अब साकार में अनेक प्रकार की लिमिटेशन आती है, अव्यक्त में कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इसीलिए बच्चे ऊपर आ जाओ, और ऊपर से बाबा के साथ कंबाइन होकर के सेवा का भी पार्ट बजाओ। अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य भी बाबा दे रहा है, वो पार्ट बजाओ। अनेक पार्ट बजाने के लिए बाबा आवाहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी माया का स्वरूप देखो कैसा है। कई लोग कहते हैं कि वहां मधुबन में तो बाबा आते नहीं है, अब बाबा हमारे में आता है, बाबा हमारे में आता है। अरे बाबा हमारे में क्यों आएगा, दूसरे में क्यों आएगा, जब ब्रह्मा बाबा के बाद एक ही तन फिक्स था। शिव के मंदिर में भी जाएंगे तो एक तो नंदी और एक कछुआ, दो ही रथ दिखाए हुए हैं, तीसरा रथ दिखाया ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा मधुबन के सिवाय और कहीं नहीं आता है, और अब बाबा आने के बजाय बाबा हमारा आवाहन ऊपर कर रहा है। प्रमोशन वाली स्थिति में जाना है या माया के इस चक्कर में, ये अंतिम चक्कर है, माया फुल फोर्स से आएगी। बाबा ने कहा है कि माया का अंतिम चक्कर चलेगा, जितने को गिरा सके वो गिराने का प्रयत्न करेगी, इसीलिए ये माया के अंतिम दाव को भी पहचानो। बाबा मधुबन वाला है, गायन ये है, मधुबन वाला बाबा, फलानी जगह का बाबा, फलाने जगह का बाबा, ये गायन नहीं है। इसलिए बाबा कहीं नहीं आएगा, अब बाबा का आने का वक्त नहीं। बाबा हमें अव्यक्त वतनवासी बनाने के लिए जो इतनी सामर्थी बाबा ने दी है, उस सामर्थी को भी हम यूज करें। अब हमारी स्थिति प्रमोशन में जा रही है, व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाना है, या व्यक्त में और देहधारियों में फंसना है, किस में जाना है। इसीलिए विवेक को यूज करना है, बाबा के साथ के अनुभवों को यूज करना है, और माया के इस चक्कर को भी पहचानते हुए अपने आप को विजयी बनाना है। अगर इस चक्री में फंस गए तो फिर क्या होगा, गए इतने सालों का जो पुरुषार्थ किया वो भी पानी में चला जाएगा। इसलिए एक बात याद रखो, तीसरा रथ गाया नहीं है, शास्त्रों में भी गायन नहीं है, दो ही रथ दिखाए हुए शिव के मंदिर में भी। तो इसीलिए अब बाबा हमारा आवाहन जब ऊपर कर रहे हैं, तो हमें व्यक्त से अव्यक्त स्थिति बना करके अव्यक्त मिलन का ही अनुभव करना है, और बाबा ये समर्थी अव्यक्त मिलन की भी हम बच्चों को प्रदान कर रहे हैं, इसको अनुभव के आधार पर यूज करो। इसलिए कहा देहधारियों में फंसना नहीं है, देहधारियों में फंसे तो गए, ठीक है ना। इसलिए देहधारियों में फंसना नहीं है, अपने आप को उससे भी ऊपर ले जाना है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।